हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवते चैतन्य चंद्राय ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जयति जयति देव देवकी नंदन सो जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो यदुवर परीश स्वेदोर्भिरस्यन्न धर्मम् यदुवर परीश स्वेदोर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचरवृजन् विजन्न सुस्मति श्रीमुखे व्रजपुर वनीता नाम वर्धयन्न कामदेवम् नाहं विप्रो च नरपति अब ये तो बोलना ही पड़ेगा नाहं विप्रो न च नरपति बोलिए न अपि वेश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो न यतिर्वा किन्तु प्रोद्य निखिल परमानंद प्रणामृताब्धे गोपीर भर्तु पद कमलम यो दास दासानुदास। ये चार श्लोक महाप्रभु रथ यात्रा में अपने मुख से उच्चारण किए थे। अब देखते हैं यहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं आज की कथा में। आपको बोलना है? टाइम जाएगा। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे प्रियो जगत करो करुणावतारो वंदे हम अनंत अद्भुतेश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभु निचो अपि यत् प्रसादात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। आप सब गौड़ीय भक्तों का हम स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर महोत्सव करीब आने जा रहा है और आज प्रायः सब लोगों ने जहाँ से इस जगत के नाथ जगन्नाथ गुजरने वाले हैं उस रास्ते को हृदय से प्रेम से साफ किया और अपने हृदय को पवित्र किया। देख रहा था जितने लोग कचरा साफ कर रहे हैं, उस रास्ते से कचरा हटा रहे हैं और वही लोग भगवान की कृपा से अपने हृदय से कचरा हटा लिए। सब लोग पवित्र बनकर यहाँ पर बैठे हैं। वास्तव में आप बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो कि इस प्रकार का मौका आज हमें मिला, जिसकी सुकृति बहुत बढ़ जाती है, जिसके सारे पुण्य एक साथ मिल जाते हैं, पहाड़ जैसे पुण्य बन जाते हैं और सुकृति मिलती है, तब जाकर इस प्रकार के कार्य हम सब कर सकते हैं। तो वास्तव में आप धन्य हो और आप सब परम पवित्र आत्माएं हो और ऐसे परम पवित्र आत्माओं के बीच में बैठकर भगवान की लीला कथा सुनाना ये परम सौभाग्य है। वास्तव में ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आप जैसे बहुत ही आगे बढ़े हुए भक्तों के सामने हमें कुछ बोलने का मौका मिलता है। और भक्तों के संग में कुछ बोलने का आनंद ही कुछ और होता है। प्राय हम देखते हैं नए लोगों के सामने बोलना और वही सिद्धांत और वही नई नई बातें, पुरानी बातें, क ख ग घ ये कहते 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 हम तंग आ जाते हैं, कुछ नया नहीं कह सकते। लेकिन जब भक्तों का संग होता है तो उसमें भाव होता है, प्रेम होता है, रस होता है, ये सब हम दे सकते हैं। नए भक्तों में यह देना, जैसे नाम अपराध में कहा गया है, नवा नाम अपराध क्या है आपको मालूम है? अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान कृष्ण के नाम का महिमा का उपदेश देना, तो यह अपराध जैसा भी हो जाता है लेकिन भक्तों के बीच में रस आता है, आनंद मिलता है और ध्यान से सुनते भी हैं। और वास्तव में देखा जाए तो मुझ में कोई योग्यता नहीं है कि आप लोगों के बीच में बैठकर मैं कुछ बोलूं यहाँ पर, लेकिन भगवान को दया आ जाती है आप पर कि आप इतना समय निकाल कर इतने दूर दूर से यहाँ पर आते हो और भगवान को दया आती है इतने दूर से ये बड़े बड़े भक्त आए हैं। अरे मूर्ख क्या कहेगा ये लोगों को सुनने के लिए, इसलिए भगवान प्रेरणा दे देते हैं यहाँ पर कुछ कि इस मेले हृदय से मुख से कुछ निकले। देखा जाए तो हमारा कार्य एक टेप रिकॉर्ड की तरह है। टेप रिकॉर्ड में अगर वैसे ही रखा जाए तो नहीं बजता है, इसमें कैसेट डालेंगे तभी वो बजता है। ठीक उसी प्रकार हम भी एक टेप रिकॉर्ड है और भगवान के द्वारा यह कैसेट इसमें डालते रहते हैं और हम आपको कहते रहते हैं, तो यह भी एक भगवान की और आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो जैसे पिछले रविवार को हमने सुना भगवान जगन्नाथ क्या है, अगर कहा जाए जगन्नाथ जी कौन है तो बस उत्तर यही होगा कि राधा रानी के विरह में कृष्ण का जो हाल है वो है जगन्नाथ। राधा रानी के विरह में कृष्ण की जो स्थिति हो गई है, बहुत दुखद अवस्था में, वो तो आपने अब सुना ही होगा पिछले रविवार को क्या स्थिति हो गई थी, तो यही है जगन्नाथ जी का स्वरूप। और यही है सुभद्रा और बलदेव जी का स्वरूप। तो ऐसे जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही करीब आ रही है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के 15 दिन पहले स्नान यात्रा होती है, जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है अलग अलग कुंडों से, अलग अलग सरोवरों से, अलग 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 नदियों से, समुद्र से पानी लाकर पानी के द्वारा भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी का स्नान कराया जाता है और इस महोत्सव को स्नान यात्रा कहते हैं। और यह स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ दर्शन देना बंद कर देते हैं। अब आचार्य गण अपने अपने भाव के अनुसार कहते हैं भगवान जगन्नाथ क्यों दर्शन नहीं देते हैं। तो कुछ आचार्य गण कहते हैं कि बहुत नदियों से, कुंडों से, सरोवरों से पानी लाकर भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक करते हैं तो भगवान को न्यूमोनिया हो जाता है। ठंडे ठंडे पानी से स्नान कराते हैं तो भगवान भी, हमारी तरह शरीर है भगवान का भी, तो बेचारे भगवान बीमार हो जाते हैं तो 15 दिन के लिए रेस्ट लेते हैं। इसलिए 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं। आज भी आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में दर्शन खुला नहीं था। तो कुछ आचार्यगण अपने भाव के अनुसार भाव निकालते हैं कि जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं इसलिए दर्शन नहीं देते। लेकिन वास्तविक में सच बात तो यह है, सत्य बात यह है आध्यात्मिक जगत की, कि जगन्नाथ जी साल भर सभी भक्तों को दर्शन देते रहते हैं और हजारों हजारों भक्त जगन्नाथ जी के सामने आते हैं और दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये दर्शन देने में, आशीर्वाद देने में, कृपा बांटने में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को समय नहीं दे पाते हैं। तो पत्नी है, रूठना मनाना तो चलता है, तो लक्ष्मी जी भी रूठ जाती है कि आप हमें समय नहीं देते हो, हमें भी समय दो। तो भगवान जगन्नाथ एक बहाना बनाते हैं कि अब मैं बीमार हो गया हूँ, जैसे हम भी कहीं घूमने जाना हो, ऑफिस में छुट्टी करनी हो या स्कूल में छुट्टी करनी हो, तो बस यही बहाना सबसे बड़ा होता है कि हम बीमार हो गए, पेट में गड़बड़ है या बुखार आ गया है, इसलिए हम नहीं आए। चूंकि हम भगवान के अंश हैं इसलिए भगवान जो बहाना करते हैं वही बहाना हम करेंगे। तो जगन्नाथ जी बहाना करते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ इसलिए 15 दिन तक आराम करूँगा। तो उस 15 दिन में भगवान जगन्नाथ 24 घंटा लक्ष्मी जी को समय देते हैं और 15 दिन तक यह लक्ष्मी जी को समय देते हैं और दर्शन बंद रहता है। और 16वें दिन जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं और जिस दिन दर्शन देना होता है उसके अगले दिन, क्योंकि जगन्नाथ जी को बहुत ही जल से उसका अभिषेक किया गया है इसलिए जो कलर होता है वह निकल जाता है मूर्ति से, तो जगन्नाथ जी का नया कलर, नए रंग लगाते हैं और नई नई सब अलग अलग कलर लगाते हैं। तो 15 दिन के बाद जो 16वां दिन में जगन्नाथ जी जब दर्शन देते हैं तो इसको नेत्रोत्सव कहा जाता है, नेत्रोत्सव। और इस दिन जगन्नाथ जी बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर रंग में, जैसे जगन्नाथ जी और जवान हो गए हैं ऐसे दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, आप भी देखेंगे कल मंदिर में। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं और उसके अगले दिन, दर्शन देने के अगले दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को बुलाए, एकत्रित किए और एकत्रित करके गुंडीचा मंदिर मार्जन किया। वह कथा हमने शुक्रवार को सुनी और जैसे सुना था वैसे ही आज हमने इसका प्रत्युत्तर, इसका आचरण किया। मैं देख रहा था बहुत प्रेम से भक्तगण झाड़ू लगा रहे थे, खास करके जिग्नेश प्रभु बहुत ही प्रेम से, अपने शरीर का कपड़े का कुछ ख्याल नहीं था दिनेश प्रभु। वैसे तो सब भक्तगण बहुत ही हृदय से मार्जन कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर कार्य आज सुबह हमने संपन्न किया। तो जगत के आचार्य, सबसे बड़ा आचार्य भगवान के अलावा और कौन हो सकता है, तो भगवान ही सिखा रहे हैं किस प्रकार गुंडीचा मंदिर मार्जन करना चाहिए। तो सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने कि इस प्रकार गुंडीचा मार्जन करना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन कर दिया, प्रसाद लिया, सब लोगों ने आराम किया, फिर चले गए। फिर अब दूसरे दिन नेत्रोत्सव था, तो नेत्रोत्सव किए, जगन्नाथ जी का दर्शन किए, और बाद में रथ यात्रा का दिन था। तो उस रथ यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु बहुत जल्दी उठ गए, वैसे तो मंगला आरती में उठा करते हैं 4 बजे, 4:15 बजे, लेकिन इस बार चैतन्य महाप्रभु रात को ही उठ गए और अपने सारे भक्तों को उठा लिए। तब तो हम कविराज गोस्वामी की भाषा में इसको सुनेंगे। तो कृष्णदास को कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, और जितने भी गौर भक्त हैं, जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण हैं, यह सब की जय हो। वास्तव में जय बोलना भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है जय बोलने से। तो जय श्रोता गण सुनि करी एक मन, सब श्रोतागण जितने भी यहाँ पर और वहां पर सुनने वाले हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं जितने भी पढ़ने और सुनने वाले हैं, यह सब की जय हो। क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, सुनना एक बहुत बड़ी भक्ति है। वास्तव में कभी कभी मन में ऐसा होता है कि प्रचार करना और प्रवचन करना यही सबसे बड़ी भक्ति है। अक्सर अमित प्रभु हमें कहा करते हैं, प्रभु जी और सब सेवा करेंगे तो चलेगा, मैं सब कर सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ी भक्ति अगर कोई है तो वो है सुनना। सुनने वाला कभी भी सुनाने वाले से ज्यादा फायदे में सुनने वाला रहता है। अब सुनाने वाला तो अपनी मन से जो जानता है, जो पढ़ा है, वही कहेगा, लेकिन सुनने वाला जो है वह तो कई जगह पर सुनता रहेगा और कई चीज एकत्रित करते अपने दिमाग में बिठाएगा। और नवदा भक्ति में भी अगर आप देखते हो तो नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण। श्रवण करना सबसे बड़ी मुख्य भक्ति है। श्रवण करने से ही जीव का उद्धार हो सकता है। कुछ लोग भक्ति में आने के बाद निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, करना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है और हृदय से करना चाहिए। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि हमने कुछ सुना था इसलिए आज हम जप कर रहे हैं। पहली बार कभी भी हमने किसी से कुछ सुना था कि इस प्रकार जीवन जीना चाहिए, ये कि वो करना चाहिए, तब जाकर हम आज जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो सुनने के कार्य को ही हम अगर भूल जाएंगे तो ठीक नहीं है। अगर सुनना बंद कर दिए तो जप में जो रुचि है वो चली जाएगी। तो सुनना और बोलना ये दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, ऐसा नहीं एक चीज को छोड़ देना चाहिए, दोनों साथ में चलनी चाहिए। श्रवण भी करना चाहिए और उतना ही कीर्तन करना चाहिए। और मैं ये कह रहा था, सुनने वाला हमेशा फायदे में रहता है और सुनने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है, और सुनने वाला के कारण ही कोई बोल सकता है। आज मैं यहाँ पर बैठकर कुछ बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब सुनने वाले बैठे हों। आपको एक सच बात कहूँ, अगर आप सुनने वाले यहाँ पर नहीं होते तो मैं ये जगन्नाथ रथ यात्रा का जो कथा है मैं कभी सुनता नहीं। पढ़ता नहीं, सुन लेता, लेकिन पढ़ने की कष्ट तो मैं कभी नहीं करता। अगर आप सुनने वाले यहाँ पर नहीं होते, आप कुछ सुनने के लिए यहाँ पर आए हो, इसलिए मेरे मन में यह होता है कि बेचारे इतना समय निकाल कर आते हैं तो कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ बताने के लिए, तो इसलिए मैं ये सब पढ़ता हूँ। फिर टाइम हो या ना हो, कुछ भी, लेकिन सुनने वाले आ रहे हैं, आने वाले हैं, इसके कारण हम कुछ प्रयास करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। तो यह सारा श्रेय सुनने वाले पर जाता है, क्योंकि आप सुन रहे हो यहाँ पर, इसलिए हम कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जय श्रोतागण, इसलिए श्रोतागण की जो सुनने वाले हैं उसकी जय हो। तो जय श्रोतागण सुनी करी एक मन, लेकिन हे श्रोतागण आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप यहाँ पर जो सुन रहे हो वो करी एक मन, एक मन करके, एक चित करके आप यहाँ पर सुनो, क्योंकि मन का स्वभाव है अलग अलग जगह पर भागना। वैसे तो हम समय निकाल कर बहुत कुछ त्याग कर यहाँ पर आकर बैठते हैं, लेकिन प्राय देखा जाता है शरीर तो यहाँ पर रहता है लेकिन मन अलग अलग जगह पर, वह क्या कर रहा होगा, वह क्या कर रही होगी, कल बिजनेस में, कल मैं ऑफिस कितने बजे जाऊँगा, ये वो क्या करेगा, मैं अब क्या करूँगा, तो यह सोचते रहते हैं। लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं करी एक मन, एक मन करके, एक चित से ये कथा सुनिए। रथ यात्राए नृत्य प्रभु परम मोहन, क्योंकि यह जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह कथा रथ यात्रा की कथा है, और इस रथ यात्रा की कथा में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा, रथ के ऊपर आरूढ़ है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नीचे खड़े हैं, और वही चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर नृत्य इस रथ यात्रा में किए हैं। तो इस नृत्य की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और यह कथा बहुत ही परम मोहन, मन को मोहित कर लेने वाली है। तो यह कथा मन को मोहित तब करेगी जब सुनी करी एक मन करके, एक चित करके हम सुनेंगे। तो हमारी भाषा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहना चाहते हैं कि ध्यान रखें नींद ना आ जाए, नींद ना आ जाए, नींद पर कंट्रोल करना चाहिए, और भूख प्यास इत्यादि सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करके यह कथा हमें सुननी चाहिए। तो प्रैक्टिकली इस पर कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ही सीधा स्ट्रेट बैठना होगा, किसी भी चीज का टेका नहीं लेना होगा, तो इससे नींद नहीं आएगी, ये साइंटिफिकली रीजन है। तो आगे कहते हैं आर दिन महाप्रभु हया सावधान। तो ये नेत्रोत्सव के बाद आर दिन, आर दिन का अर्थ अब मैं आपको बंगाली भी सिखाऊंगा, क्योंकि आप भी अगर जाओ बंगाल में तो ठीक से समझ सको। आर दिन महाप्रभु, आर दिन का अर्थ होता है दूसरे दिन। तो इसके दूसरे दिन, नेत्रोत्सव के दूसरे दिन आर दिन महाप्रभु हया सावधान, महाप्रभु सावधान हो गए। सावधान का अर्थ क्या होता है? वैसे तो हम सावधान रहते हैं दोपहर को और बाद में कभी, लेकिन सुबह हम सावधान नहीं रहते हैं। सुबह तो सोना है, आलस आती है, और कैसे करके और 5 मिनट सो जाऊं, और 5 सेकंड सेकंड का हिसाब होता है। लेकिन महाप्रभु इस प्रकार नहीं, महाप्रभु सावधान थे कि आज रथ यात्रा है, इसलिए बिल्कुल मिलिट्री जैसे सावधान थे, जैसे कहते हैं सावधान विश्राम, तो विश्राम में नहीं थे, सावधान में थे। तो आर दिन महाप्रभु हया सावधान, दूसरे दिन महाप्रभु सावधान होकर रात्रे उठी गण संगे केल प्रात स्नान, रात को उठ गए। रात का अर्थ होता है 2-2.5 बजे उठ गए होंगे, जिस दिन रथ यात्रा थी उस दिन महाप्रभु 2-2.5-3 बजे उठ गए। तो रात्रे उठी और अकेले नहीं उठे, गण संगे जितने भी गण थे सबको उठाए, चलो उठो। ये है महाप्रभु की कृपा, अकेले भी उठ सकते थे लेकिन लोगों का उद्धार करने के लिए आए थे, इसलिए सब जितने भी गण थे, जितने भी भक्त थे सबको उठाए। तो गण संगे केल प्रातः स्नान, और तुरंत उठकर सावधान होकर स्नान करने के लिए चले गए। पांडु विजय देखी बारे करिल गमन, जगन्नाथ यात्रा के लिए छाड़ी सिंहासन। इसलिए जल्दी उठ गए क्योंकि वह पांडु विजय उत्सव देखना चाहते थे। अब पांडु विजय उत्सव किसे कहा जाता है? तो जगन्नाथ यात्रा के लिए छाड़ी सिंहासन। जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर में जहां पर विराजमान है और नीचे तीन रथ खड़े हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, खाली रथ है, तो जगन्नाथ सिंहासन से जगन्नाथ जी को उठाकर रथ में बिठाने के महोत्सव को पांडु विजय महोत्सव कहते हैं। तो यह देखने के लिए जगन्नाथ जी को कैसे उठाकर रथ में आरूढ़ किया जाता है, रथ में बिठाया जाता है, तो यह देखने के लिए महाप्रभु बहुत ही जल्द उठ गए अपने भक्तों के साथ। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। तो वहां पर एक राजा प्रताप रुद्र थे, शुक्रवार को हमने आपको बताया था। तो राजा प्रताप रुद्र चक्रवर्ती सम्राट थे। तो राजा प्रताप रुद्र ने सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए व्यवस्था कर दी कि राजा है, कुछ भी कर सकता है। तो व्यवस्था कर दी कि ये जो चैतन्य महाप्रभु जितने भी भक्तगण हैं वह ठीक से दर्शन कर सके। अद्वैत निताय आदि संगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। तो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु और भी कई सारे भक्तगण बहुत ही सुख से, उल्लास से, आनंद से जगन्नाथ जी जो सिंहासन से रथ में जा रहे थे वह देख रहे थे। बलिष्ठ दयिता गण येन मत हाथी जगन्नाथ विजय कराए करी हाता हाथी। बलिष्ठ दयिता, अब जैसे आप इंद्रधनु राजा की कथा सुनते हो तो उसमें जगन्नाथ जी जो पहले नील माधव का रूप था, तो नील माधव की सेवा सबर जाति के लोग किया करते थे। सबर जाति के लोग जो सुअर को खाते हैं, ऐसे आदिवासी लोग नील माधव की सेवा करते थे। तो इसलिए राजा इंद्रधनु ने कह दिया कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन यह जो कार्य है जगन्नाथ जी को लाने आने का, यह शबर जाति के परंपरा में आने वाले लोग ही करेंगे। इसलिए शबर जातियों में भी जो ब्राह्मण, जो शुद्ध लोग रहते हैं, ऐसे लोग यह कार्य करते हैं। तो बलिष्ठ दैता, और ऐसे लोग को बलिष्ठ दैता कहते हैं, दैता लोग कहते हैं। तो बल वाले ये जो दैता थे, जगन्नाथ जी को जो उठाने वाले थे, वो बहुत ही भट्टे घट्टे मसल्स और बल वाले थे। तो बलिष्ठ दैता गण ये न मत हाथी, कैसे थे? कविराज गोस्वामी कहते हैं मत हाथी, जैसे हाथी, हाथी तो बहुत बल वाला रहता है लेकिन जब वो पागल हो जाए तो बड़े बड़े गांव गांव को उजाड़ देता है, तो मदमस्त हाथी की तरह वह दैत लोग, वह शबर लोग थे। और जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी, और जगन्नाथ जी को सिंहासन से रथ में ले जाने के लिए हाथा हाथी कर रहे थे। कतक दैता करे स्कंध आलंबन, कतक दैता घरे श्री पद्मचरण। तो कुछ दैत, कुछ अब दैत का अर्थ आप जान गए हो, वह शबर जाति के जो शुद्ध लोग रहते हैं। तो कुछ दैतागण जगन्नाथ जी के जो विग्रह है, जगन्नाथ की मूर्ति को अपने कंध कंध कंधे पे रखते हुए चल रहे थे, और कुछ दैता, कुछ दैत कतक दैता धरे श्री पद्मचरण, और कुछ लोग जगन्नाथ जी का पद्म चरण को उठा रहे थे। पद और चरण तो है नहीं लेकिन यह भाव है, नीचे से पकड़ रहे थे। कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट डोरी, दुई दिखे दैता गण उठाए ताहा धरी। और जगन्नाथ जी का विग्रह बहुत बड़ा है, कितने फीट का? 7 फीट का कुछ होगा, हमसे हमारी हाइट से बड़ा है और बहुत ही वजन वाला है। तो जगन्नाथ जी को कटी तटे, जगन्नाथ जी के कमर पर एक बहुत ही जाड़ी रस्सी बांधी जाती है, और वो रस्सी रेशम की रहती है। तो कमर पे रेशम की डोरी बांधकर, रस्सी बांधकर, एक और दूसरी दोनों ओर से वह दैत गण, वह शबर जाति के जो ब्राह्मण है, वो डोरी को पकड़कर उसे उठाकर लेकर जाते हैं। दुई दी के दैता गण उठाए ताहा धरी, और दैता गण इसे उठाते हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पाति स्थाने स्थाने, एक तुली है ते त्वराए आर तुली ते आने। उच्च दृढ़ तुली सब पाति स्थाने स्थाने, और दैत लोगों ने, भक्तों ने स्थान स्थान पर सिंहासन से रथ तक बहुत ही जाड़े जाड़े गद्दे बिछा कर रखे थे। गद्दे रखने का एक ही तात्पर्य था कि जगन्नाथ जी का विग्रह बहुत ही भारी था, और जगह जगह पर थोड़ा आराम लेने के लिए उस विग्रह को रखना पड़ता था। तो जगन्नाथ जी का विग्रह नीचे न रहे इसलिए बहुत जाड़े जाड़े गद्दे रखे गए थे, बहुत ही रुई रुई वाले गद्दे रखे गए थे ताकि जगन्नाथ जी को ऊपर बिठाया जाए और चोट ना आए। तो उच्च दृढ़ बहुत ही जाड़े तुली सब पाति स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर यह गद्दे रखे गए थे, और एक तुली है ते त्वराए आर तुली ते आने, और एक गद्दे से दूसरे गद्दे पर और दूसरे गद्दे से तीसरे गद्दे पर ऐसे जगन्नाथ जी को आराम कराते कराते, जगन्नाथ जी को गद्दे पर बिठाते बिठाते और खुद आराम करते करते जगन्नाथ जी को सिंहासन से रथ तक लेकर जा रहे थे। प्रभु पदा घाते तुली हय खंड खंड, प्रभु का, जगन्नाथ जी का वजन इतना मजबूत है, इतना वजन है। अब जगन्नाथ जी हैं, जगत के नाथ है, अब जगत का भार संभाल कर रखे हैं, तो वह कितना भारी होंगे। और भोजन तो इतना करते हैं, आप देखकर चक हो जाओगे, बहुत पूरा दिन तक भोजन ही बनता रहता है, बहुत ही बड़ा रसोई घर है जगन्नाथ मंदिर में। तो ऐसे प्रभु का वजन बहुत है, इसलिए प्रभु पदाघाते, प्रभु के पद के अर्थात जगन्नाथ जी के मूर्ति के गद्दे पर गिरने के कारण जो तुली है खंड खंड, जो गद्दा था वह खंड खंड टूट जाता था, और तुला सब उड़ी पाए शब्द है प्रचंड। और जब उस गद्दे पर रखा जाता था जगन्नाथ जी को, तब तो प्रचंड फट फट ऐसे आवाज आता था और वो गद्दा फूटने लगता था, और गद्दा फूटने से उसमें से रुई निकलने लगती थी, और वह रुई पूरे जगन्नाथ जी के ऊपर, भक्त के ऊपर उड़ने लगती थी। जैसे हम यहाँ पर स्नो स्प्रे लगाते हैं, विवाह में आपने देखा होगा स्प्रे मारते हैं कुछ मजाक इत्यादि करने के लिए, तो वैसे जगन्नाथ जी को जब गद्दे पर रखा जाता था, गद्दे फट फटते थे और फट फट कर जो रुई थी वो उड़ने लगता था। आपको दिखा दूं, देखने से ये देखिए, जगन्नाथ जी को रखा जा रहा है और नीचे से वो गद्दा उड़ रहा है। देखिए कितना बड़ा विग्रह है। तो इस प्रकार गद्दा टूट रहा है और उड़ रहा है सब रुई। विश्वम भर जगन्नाथ थे के चालाई ते पारे, आपन इच्छाएं चले करी ते विहारे। अब हमें लगता है कि यह सबर लोग जगन्नाथ जी को सिंहासन से रथ यात्रा रथ पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन विषम भर का अर्थ होता है जगत का भरण पोषण करने वाले। जगन्नाथ जी जो है जगत का भरण पोषण करने वाले हैं। वैसे तो हम यही जानते हैं कि मेरा भरण पोषण करने वाला मैं स्वयं हूँ, और हमारी पत्नी और हमारे घर वाले बंधु पुत्र का भरण पोषण करने वाला मैं हूँ। वास्तव में हम किसी के भरण पोषण करने वाले नहीं हैं। हमारा भरण पोषण करने वाला, इस दुनिया का, विश्व का भरण पोषण करने वाला वो विश्वम्भर है, वह कृष्ण है, वह जगन्नाथ है। तो विश्वम्भर जगन्नाथ है के चलाई ते पारे, इस जगत का नाथ को कौन चला सकता है, इसको कौन उठा सकता है। आपन इच्छा है, ये तो प्रभु की इच्छा है कि वह चलना चाहते हैं, वह सिंहासन से रथ पर आना चाहते हैं। तो आपन इच्छा है चले करी ते विहारे, अपनी इच्छा के कारण वह चल रहे हैं। वास्तव में हमें लगता है कि हम उठा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को कोई नहीं उठा सकता, वह तो अपनी इच्छा से चलते हैं। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछु ना सुनी। और महाप्रभु उस वक्त मणिमा मणिमा कर करके वो ध्वनि कर रहे थे। तो मणिमा का अर्थ क्या होता है? तो ओडिशा में ऐसे सामान्य पुरुष को मणिमा शब्द करके पुकारते हैं। जैसे हम कहते हैं साधु साधु साधु, वैसे महाप्रभु मणिमा मणिमा करते हैं। और नाना वाद्य कोलाहले किछु ना सुनी, और नाना प्रकार के कई प्रकार के वाद्य बज रहे थे, ढोल मृदंग करताल इत्यादि सब कुछ बज रहा था, इसलिए से और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, सुवर्ण महाजनी लया करे पत समाजन। जैसे कि आपने फोटो में देखा, उस वक्त राजा प्रताप रुद्र, जैसे यहाँ पर अगर रथ यात्रा होने वाली हो तो मनमोहन सिंह आकर झाड़ू लगाए, वही चीज वहां पर राजा प्रताप रुद्र वहां पर रथ यात्रा जहां पर जगन्नाथ जी को लेकर जा रहे थे सिंहासन से, तो प्रताप रुद्र झाड़ू लगा रहे थे, इतने बड़े राजा, क्योंकि भगवान के परम भक्त थे। चंदन जलेते करे पथ निशेचने, तुच्छ सेवा करे वासी राज सिंहासने। राज सिंहासने, बहुत बड़े राजा होने के बाद भी, बहुत बड़े सिंहासन पर सवार होने वाले राजा प्रताप रुद्र, इतने बड़े राजा होने के बाद भी एक तुच्छ सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो रास्ते पर चंदन चंदन की सुगंध वाला जल छिड़क रहे हैं और कचरा साफ कर रहे हैं। उत्तम हया राजा करे तुच्छ सेवन, अत एव जगन्नाथेर कृपार भारजन। राजा होने के बाद भी इतनी तुच्छ सेवा कर रहे हैं, वास्तव में तुच्छ सेवा नहीं, ये उत्तम सेवा है, लेकिन फिर भी राजा होने के बाद भी ये तुच्छ सेवा कर रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ की कृपा इस पर अवश्य होगी। आगे चलकर हम देखेंगे किस प्रकार राजा प्रताप रुद्र पर जगन्नाथ जी की कृपा होने वाली है। राजा होने के बाद भी अपने हाथों में झाड़ू लेकर साफ कर रहे हैं रास्ता, तो इस पर अवश्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृपा होगी। कैसे होगी हम आगे देखते हैं। महाप्रभु सुख पायल से सेवा देखी थे। जब राजा प्रताप रुद्र सेवा कर रहे थे या झाड़ू मार रहे थे, तब महाप्रभु बहुत ही आनंदित हो रहे थे, संतुष्ट हो रहे थे कि नहीं, वास्तव में इसके हृदय में भक्ति है। महाप्रभु कृपा है ले से सेवा है थे, और महाप्रभु की कृपा से ही वह सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, वास्तव में सेवा करना और भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, श्रवण करना, बस यह करना, यह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण की और गुरु की कृपा है। बिना गुरु और कृष्ण की कृपा के अलावा हम एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले सकते। हम जो भी भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी कृपा कृष्ण की है और गुरु की है। प्रभुपाद जी लिखे, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भगवान मिल सकते हैं और भक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पर लिखते हैं महाप्रभु कृपा है ल से सेवा ही थे, यह महाप्रभु की कृपा है कि यह सेवा कर रहे हैं। रथेर साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। रथेर साजनी, रथ बहुत, रथ की बहुत ही सुंदर शोभा थी, क्योंकि रथ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और इत्यादि लगाकर सजाया गया था। और नव हेममय रथ सुमेरु आकार, और रथ पर सुवर्ण रंग, हेम हेममय का, हेम का होता है सोना, तो सोने की तरह वह रथ चमक रहा था। और भगवान की कृपा से यह सेवा भी हमें ही मिली है, मंगलवार को हमें भी यह रथ सजाना है और फूलहार लगाना है। शत शत सुचामर दर्पणे उज्जवल, ऊपरे पताका शोभे चंद दोया निर्मल। उस रथ पर शत शत सैकड़ों सैकड़ों चारमर लगाए गए थे और सैकड़ों सैकड़ों कांच लगाए गए थे छोटे छोटे, तो इससे बहुत ही निर्मल, बहुत ही सुंदर यह रथ लग रहा था। घाघर किंकर्णी बाजे घंटार कवणित, नाना चित्र पट वस्त्रे रथ विभूषित। उस रथ में छोटी छोटी घुंघरी अक्सर जो माता जियों के चरण में रहती हैं बजती है, तो रथ में कई छोटी छोटी घुंघरियाँ लगाई गई थी, और किंकणी और बाजे और बड़े बड़े घंटे सब कुछ लगाए गए थे ताकि जैसे ही रथ थोड़ा भी चले तो आवाज आए टन 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 इस प्रकार। और इस नाना चित्र पट वस्त्र इस प्रकार रथ बहुत ही सुंदर दिख रहा था। लीलाए चढ़ील ईश्वर रथेर ऊपर आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। और धीरे धीरे करके जगन्नाथ जी को रथ के पास लाया गया और जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाया गया, और उस प्रकार सुभद्रा जी को भी रथ पर बिठाया गया और बलदेव जी को भी रथ पर बिठाया गया। सबसे पहले जगन्नाथ जी थे रथ में, बाद में सुभद्रा जी और बाद में बलदेव जी, इस प्रकार से रथ में बिठाया गया। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लया तार संगे क्रीड़ा केल निभृते वसिया। अब अनवसर का समय समाप्त हो गया है, लक्ष्मी जी को जो 15 दिन दिया गया था वह समाप्त हो गया है। अब जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हो गए हैं जगत को दर्शन देने के लिए। ताहार सम्मति लया भक्ते सुख दीते रथे चढ़ी बाहिर हैल विहार करीते। और लिख रहे हैं कि लक्ष्मी जी की रजा लेकर, लक्ष्मी जी की आज्ञा लेकर जगन्नाथ जी रथ पर बैठ गए हैं कि अब मैं दर्शन देने के लिए जा सकता हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा होगा ठीक है अब आप जा सकते हैं। सूक्ष्म श्वेत बालू पथे पुली नेर सम दुई दिके टोटा सब येन वृंदावन। और धीरे धीरे उस रथ को, रथ के जहां पर रथ चल रहे थे, रथ थे उसके आजू बाजू में सूक्ष्म श्वेत बालू, छोटी छोटी बालू थी, वो बालू किसके समान लग रही थी? कहते यथे पुली नेर सम, जैसे यमुना नदी के तट पर बालू होती है वैसे ही बालू उस रथ, जहां पर रथ था उसके आजू बाजू में बालू थी। और दुई टीके टोटा सब, और रथ के आजू बाजू में दोनों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर बगीचे थे। टोटा का अर्थ होता है बगीचा, बहुत ही सुंदर सुंदर बगीचे थे। इसलिए यह जो दृश्य था ये न वृंदावन, ये दृश्य वृंदावन जैसा लग रहा था। बहुत ही सुंदर सुंदर बालू थी जो यमुना के पुलिन के तट की तरह दिख रही थी, और बगीचे वृंदावन की तरह दिख रहे थे। कविराज गोस्वामी कहते यह दृश्य वृंदावन की समान लग रहा था। रथे चढ़ी जगन्नाथ करीला गमन दुई पाश्वे देखी चले आनंदित मन। जगन्नाथ जी रथ पे विराजमान है और रथ चल रहा है और जगन्नाथ जी दोनों ओर देख रहे हैं, और दोनों ओर देखकर जगन्नाथ जी का मन बहुत ही आनंदित हो रहा है। गौड़ सब रथ टाने करिया आनंद क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद। सारे गौड़ भक्त, सारे जगन्नाथ जी कृष्ण के भक्त, बंगाल से आए हुए भक्त उस रथ को खींच रहे थे, और रथ को खींचते खींचते मन ही मन में आनंद और उल्लास हो रहा था, आनंदित होकर रथ को खींच रहे थे। लेकिन क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद। कभी कभी रथ बहुत ही तेज चल रहा था और कभी कभी रथ बहुत ही धीरे 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 चल रहा था। क्यों? कहते क्षण स्थिर हैया रथे टानी हेल ना चले। और कभी कभी रथ रुक जाता था, कभी तेज चलता था कभी धीरे धीरे चलता था, तो कभी रथ रुक जाता था और टानी हेल ना चले। और जब रुक जाता था रथ तब जोर जोर से खींचने पर भी वह रथ हिलता तक नहीं था। और ईश्वर इच्छाएं चले ना चले को करो भले। वास्तव में यह रथ हमारी शक्ति से नहीं चलता है, आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं। तबे महाप्रभु सब लया भक्त गण, तो ईश्वर इच्छाएं, वास्तव में यह रथ हमारी इच्छा से नहीं चलता है कि हम जाएंगे और रथ को खींचेंगे और रथ चलने लगेगा। रथ को खींचने वाला प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि यह मेरी शक्ति से ही रथ चल रहा है। वास्तव में रथ हमारी इच्छा से नहीं चलता है, ईश्वर इच्छा है चले। यह रथ जगन्नाथ जी की इच्छा से ही चलता है और किसी की इच्छा से नहीं। आप अगर उस रस्सी को सिर्फ उंगली भी लगा कर रखो, खींचो नहीं, फिर भी रथ चलेगा, आप देखिए। लेकिन हमें ऐसा ही लगता है कि हम ही रथ को खींच रहे हैं, नहीं, ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर चाहे तब उस रथ को तेज चलाते हैं, चाहे तब धीरे चलाते हैं, और जब चाहे तब उसको रुका देते हैं। जब रुका देते हैं तब बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े लोग उसको खींचने के लिए लग जाते हैं, लेकिन एक इंच भी वह रथ हिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की इच्छा है, वह रुकना चाहते हैं तो रुक जाता है। ये अब आजकल के ट्रैफिक पुलिस वाले भी जब चाहे वहां अपनी गाड़ी रुका सकते हैं, रास्ते के बीच में रुका सकते हैं, जब चाहे वहां रुका सकते हैं। तो ये तो जगत के नाथ है, तो जब चाहे तब अपना रथ को रुका सकते हैं, रोकते हैं। तो तबे महाप्रभु सब लया भक्तगण, और जब रथ रुक गया और चलना बंद कर दिया, तब बहुत प्रयास किया गया रथ को चलाने के लिए। तब महाप्रभु ने देखा कि अब रथ चल नहीं रहा है, इसलिए कुछ करना होगा। वास्तव में जगन्नाथ भगवान की भी एक इच्छा थी, क्या इच्छा थी हम आगे देखेंगे। लेकिन महाप्रभु ने जब देखा कि रथ रुक गया है, तब महाप्रभु ने सोचा अब कुछ करना होगा। तो तबे तब महाप्रभु सब लया भक्तगण, सभी अपने जो निज भक्त थे सबको बुलाया और कहा चलो हमारे साथ। स्वहस्ते पराइल सबे माल्य चंदन, तब महाप्रभु ने अपने हाथों से सभी भक्तों के गले में माला पहनाई और सभी भक्तों के सिर पर चंदन लगाया। परमानंद पुरी आर भारती ब्रह्मानंद श्री हस्ते चंदन पाया बड़िल आनंद। परमानंद पुरी भारती ब्रह्मानंद ये सब लोग महाप्रभु के हाथों से चंदन पाकर बहुत ही खुश हो गए। अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद श्री हस्त स्पर्श दुहार हईल आनंद। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु यह सब महाप्रभु के हाथ से माला और चंदन ग्रहण करके बहुत ही आनंदित हो गए। तब कीर्तनिया गणे दिल माल्य चंदन, तब महाप्रभु ने जो कीर्तन कर रहे थे वह कीर्तन करने वाले के सिर पर चंदन लगा दिया। और स्वरूप शिवास यहाँ मुख्य दुईजन, और कीर्तन करने वाले स्वरूप दामोदर और शिवास पंडित, यह दो जन मुख्य थे। वहां पर चारी संप्रदाय हेल चंबी बश गायन, वहां पर कीर्तन करने वाले चार टोली थी, चार मंडली थी। अब आप देखिए, अब लिखते रहिए जिसके पास पेन है। उस रथ यात्रा जब चल रही थी, रुक गई थी, तो उस रुकने वाली रथ यात्रा में, मैं रुकने वाली रथ यात्रा की बात कर रहा हूं, रुकने वाली रथ यात्रा में चार मंडली थी। चारी संप्रदाय हेले चंबीश गायन, और चार चार मंडली में सब चारों मंडली के मिलाकर 24 लोग गाने वाले थे। और दुई दुई मार्दंगी क हेल अष्ट जन, और एक एक मंडली में दो दो मृदंग बजाने वाले थे, इसलिए कुल मिलाकर 8 मृदंग बजाने वाले थे। तबे महाप्रभु मने विचार करिया चारी संप्रदाय दिल गायन बाटिया। अब रथ रुक गया है, इसलिए महाप्रभु कुछ करना चाहते थे। तब महाप्रभु ने मन ही मन में सोचा और सोचा कि यह चार जो मंडली है, इस चारों मंडली को और भी कुछ कुछ मंडलियों में बांट देनी चाहिए, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। तब नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे चारी जने आज्ञा दिल नृत्य करी बारे। तब नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित पंडित को कहा, पास में जाकर महाप्रभु ने कहा, यह कौन कौन चार जन? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित, ये चार जन के पास महाप्रभु गए और कह दिया कि आप का पैर और सब ठीक है, क्योंकि मैं आपको नाचने की सेवा देने जा रहा हूँ। तो ये चारों ने कहा ठीक है, हम नाचेंगे, आप सब कुछ कीजिए, सब मीटिंग करके सब कीजिए, हम लोग नाचेंगे। तो चार जने आज्ञा दिल नृत्य करी बारे। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप लोग नृत्य करो, मैं कुछ टीम बना रहा हूँ, वहां पर आपको सिलेक्ट करूंगा। तो अब महाप्रभु टीम बना रहे हैं, मंडली बना रहे हैं। अब देखिए मंडली किस प्रकार महाप्रभु बनाए। प्रथम संप्रदाय केले स्वरूप प्रधान, पहली मंडली में चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को प्रधान रखा, लीडर बनाया। और आर पंच जन दिल तार पालीगान, और स्वरूप दामोदर के अंडर में 5 जन को चैतन्य महाप्रभु ने दिया। वो 5 जन कौन थे? तो कहते दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित आर श्री गोविंद आनंद। ये 5 जन स्वरूप दामोदर की टोली के अंडर में थे। और स्वरूप दामोदर को कहा गया कि आपको कीर्तन लीड करना है, माइक आपके हाथ में रहेगा और ये 5 जन आपके पीछे गाएंगे। तो पहली मंडली में स्वरूप दामोदर गाने वाले हैं, और दामोदर नारायण, गोविंदत राघव पंडित और गोविंदानंद, ये पांच जन उसको झिलने वाले, गुजराती में झिलने वाले कहते हैं, उसको फिर से दोहराने वाले हैं। और इस टोली में नाचने वाले कौन है, तो कहते हैं अद्वैत तेरे नृत्य करी बारे आज्ञा दिल। और अद्वैत आचार्य को कहा कि तुम्हें इस नित्यान इस सरूद दामोदर की कौन हाँ सरूद दामोदर की टीम में तुम्हें नृत्य करना है। तो इस प्रकार एक टोली बनाई गई। और दूसरी टोली में श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय केल, यह एक मंडली बनाई। अब दूसरी मंडली में श्रीवास पंडित को मुख्य रखा गया, लीडर श्रीवास पंडित कीर्तन करवाएंगे। और गंगादास हरिदास श्रीमान शुभानंद श्री राम पंडित ताहा नाचे नित्यानंद। और गंगादास हरिदास श्रीमान शुभानंद और राम पंडित, ये पांच जन को श्रीवास पंडित के पीछे गाने के लिए कहा गया। और उस टोली में नित्यानंद प्रभु को नाचने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार दूसरी टोली बना दी। अब तीसरी टोली चैतन्य महाप्रभु बना रहे हैं। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी यहाँ गाय मुकुंद प्रधान केल आर संप्रदाय। इस तीसरी टोली में तीन ही जन थे, कौन थे, वासुदेव गोपीनाथ और मुरारी दत्त। और इस तीन जन का लीडर था मुकुंद, इसलिए चार जन इस टोली में थे। श्रीकांत वल्लभ सेन आर दुई जन हरिदास ठाकुर तहां करे न नर्तन। और इस टोली में आगे चलकर और दो जन जुड़ गए, श्रीकांत और वल्लभ। और उस तीसरी टोली में नाचने वाले हरिदास ठाकुर थे। मैं पूछूंगा पहली टोली में के लीडर कौन है, पहली टोली के लीडर कौन थे, स्वरूप दामोदर, और नाचने वाले कौन थे, अद्वैत आचार्य। अब गाने वाले कौन थे, पांच जन थे, इसलिए शायद आप भूल गए होंगे। दूसरी टोली के लीडर कौन थे, श्रीवास पंडित, और नाचने वाले नित्यानंद प्रभु। और तीसरी टोली के लीडर मुकुंद, और तीसरी टोली में नाचने वाले हरिदास ठाकुर। ध्यान से सुन रहे, ठीक है। तो इस प्रकार तीन टोली महाप्रभु ने बना दी। अब चौथी टोली महाप्रभु बना रहे हैं। चौथी टोली क्या है, गोविंद घोष प्रधान केल आर संप्रदाय। गोविंद घोष को लीडर बनाया कि आपको गाना है और आपको लीडरशिप करना है। और हरिदास विष्णुदास राघव यहाँ गाए, हरिदास विष्णुदास और राघव उसके पीछे गाने वाले थे। प्रश्न हो रहा है क्या? हाँ, आपने कहा तीसरी टोली में हरिदास ठाकुर नाचने वाले हैं, तो यहाँ पर गाने वाले हरिदास, तो ये जो हरिदास है वो दूसरे हरिदास है, ये छोटे छोटा हरिदास करके नाम है इसका, तो ये दूसरे हरिदास है जिसका नाम है छोटा हरिदास। तो छोटा हरिदास विष्णुदास और राघव गोविंददास गोविंद घोष के पीछे गाने वाले हैं। माधव वासुदेव घोष दुई सहोदर नृत्य करें तहां पंडित वक्रेश्वर। और भी यह टीम में माधव वासुदेव घोष ये दोनों जुड़ गए। और वहां चौथी टोली में नृत्य करने वाले वक्रेश्वर पंडित थे। चौथी टोली में लीडर कौन थे, गोविंद घोष, और नृत्य करने वाले वक्रेश्वर। तब महाप्रभु ने पांचवी टोली बनाई। कुलीन ग्रामेर एक कीर्तनिया समाज तहां नृत्य करें रामानंद सत्यराज। और वहां पर कई गांव से, कुलीन नाम के गांव से आए थे कीर्तन की मंडली। उस मंडली में रामानंद और सत्यराज ये दोनों कीर्तन करने वाले थे और गाने वाले, नृत्य करने वाले थे। और छठी टोली में शांतिपुरेर आचार्यर एक संप्रदाय अच्युतानंद नाचे तथा आर सब गाए। शांतिपुर से अद्वैत आचार्य का एक संप्रदाय आया था और वह लोग अपनी एक टोली लेकर ही आए थे, इसलिए महाप्रभु को यह टोली बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो महाप्रभु ने चार टोली बनाई। पांचवी टोली भी कुलीन ग्राम से आई थी और छठी टोली शांतिपुर से आई थी। और सातवीं टोली खंडेर संप्रदाय करे अन्यत्र कीर्तन नरहरि नाचे तहां श्री रघुनंदन। और खंड के लोगों की, वहां के लोगों की एक और मंडली थी जहां पर नरहरि और रघुनंदन नाचने वाले थे। तो इस प्रकार सात टोली हो गई और सात टोली वहां पर नृत्य करने लगी, गाने लगी। और जगन्नाथेर आगे चारी संप्रदाय गाय, दुई पाछे एक संप्रदाय। और ये सातों टोली जगन्नाथ के रथ के आगे चार टोली थी, रथ के आजू बाजू में दो टोली और एक टोली जगन्नाथ रथ के पीछे थी। इस प्रकार सात टोलियों को चैतन्य महाप्रभु ने अरेंजमेंट कर दिया। सात संप्रदाय बाजे 14 मादल, ये सातों टोली में मिलाकर 14 मृदंग बज रहे थे, एक साथ 14 मृदंग बज रहे थे। यार ध्वनि सुनी वैष्णव हैल पागल, और ये मृदंग और करताल की ध्वनि सुनकर जितने भी वैष्णव थे बिल्कुल पागल में मदमस्त हो गए, पागल की समान वहां पर नाचने और गाने लगे। वैष्णवेर मेघ घटाए हैल बादल, वहां पर वैष्णव रूपी जैसे बादल कैसे घट हो जाता है, जम जाता है, तो अब तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यह टोली बन गई थी, इसलिए बहुत ही सुंदर कीर्तन और नृत्य हो रहा था। तो सारे वैष्णव जैसे मेघ, जैसे बादल घट, बादल बारिश की ऋतु में जैसे बादल घट हो जाता है, वैसे सारे वैष्णव भक्त वहां पर आकर जुट गए। और कीर्तनानंदे सब वर्षे नेत्र जल, ठीक जैसे बादल घट हो जाता है और उसमें से पानी बरसने लगता है, ठीक उसी प्रकार वहां पर वैष्णव भक्त जूत ही जूत में एकत्रित हो गए, नृत्य करने लगे, गाने लगे, और जैसे बादलों से पानी गिरता है वैसे सभी वैष्णव की आंख से आंसू निकलने लगा और नृत्य कीर्तन करने लगे। त्रिभुवन भारी उठे कीर्तनेर ध्वनि, और इस कीर्तन की ध्वनि से तीनों भुवन अध ऊपर के और नीचे के सभी लोगों में यह ध्वनि फैल गई। अन्य वाद्य आदिर ध्वनि किछुए ना सुनी, और जो वाद्य थे छन 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 बजने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उसका तो आवाज ही नहीं आ रहा था यह भक्तों के सामने। अक्सर हम देखते हैं मृदंग और करताल का आवाज ज्यादा आता है हमारे आवाज से, लेकिन यहाँ पर मृदंग और करताल का आवाज कम आ रहा है और भक्तों का आवाज ज्यादा आ रहा है। तो हम रथ यात्रा में जब गाएंगे तो इस प्रकार होना चाहिए। सात ठाई बोले प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बले न हस्त युग तुली। और सातों मंडलियों में कई सैकड़ों भक्तगण थे और सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इस प्रकार हस्त युगतली दोनों हाथ ऊपर कर करके हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि कर रहे थे। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो सब लोग कीर्तन की ध्वनि गूंज गई थी आकाश में, सब मृदंग एक साथ 14 मृदंग बज रहे थे, करताल बज रहे थे, सब कुछ शुरू था। वहां पर महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर लीला प्रकट की। लीला क्या थी? तो आर एक शक्ति प्रभु करील प्रकाश, एक काले सात ठाई करील विलास। तब महाप्रभु बहुत ही सुंदर लीला की, चैतन्य महाप्रभु अपना स्वरूप सात स्वरूप में कर दिए, सात चैतन्य महाप्रभु बन गए और सातों स्वरूप सातों टोलियों में सबके साथ चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। सातों टोली में चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हो गए और महाप्रभु वहां पर कीर्तन कर रहे थे। सब कहे प्रभु आछन मोर संप्रदाय, सब लोग सब टोली वाले कर रहे थे कि प्रभु मोर संप्रदाय, प्रभु मेरे ही टोली में है, मेरी ही टोली में है, लेकिन अन्य ठाई नाही यान आमारे दयाए। और महाप्रभु और किसी पर कृपा नहीं कर रहे, महाप्रभु हम पर ही आज कृपा कर रहे हैं, महाप्रभु हमारे ही साथ है। इस प्रकार सारे भक्त मन ही मन में सोच रहे थे कि महाप्रभु हमारे ही साथ नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु सातों टोलियों में थे, सातों टोलियों को ऐसा ही लग रहा था महाप्रभु हमारी टोली में। केह लखिते नारे प्रभुर अचिंत्य शक्ति, अंतरंग भक्त जाने आर शुद्ध भक्ति। अब इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सातों टोलियों में थे, यह कोई देख नहीं सकता था, यह कोई देख नहीं रहा था कि सात चैतन्य महाप्रभु बनकर सातों टोले में नाच रहे थे, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वह इसे देख सकता है। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। तो यह कीर्तन देकर जगन्नाथ जी बहुत ही हर्षित हो गए, बहुत ही आनंद उल्लासित हो गए, और यह कीर्तन देखने के लिए ही जगन्नाथ जी अपना रथ वहां पर रुका दिए थे। जगन्नाथ जी जब चार टोली थी पहले सब लोग ढूंढ ढूंढ बजा रहे थे, गा रहे थे, तब जगन्नाथ जी को आनंद नहीं आ रहा था, इसलिए जगन्नाथ जी ने अपना रथ रुका दिया तो रथ रुका दिया। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने 7 टोली बनाई और बहुत ही सुंदर नृत्य और कीर्तन करने लगे। तो तब जगन्नाथ जी हर्षित हो गए, आनंदित हो गए, और इसलिए यह दृश्य देखने के लिए ही जगन्नाथ जी ने अपना रथ रोक दिया था। प्रताप रुद्र हेल परम विस्मय। लेकिन उस वक्त जब चैतन्य महाप्रभु 7 टोली में नाच रहे थे, तब राजा प्रताप रुद्र विस्मय हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि देखी ते विवश राजा हेल प्रमय। क्योंकि राजा चैतन्य महाप्रभु जी ने जो 7 रूप किया था, वह प्रताप रुद्र देख रहे थे। अब वास्तव में आश्चर्यचकित बात है कि एक व्यक्ति कैसे 7 स्वरूप में हो सकते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र एक ही आंखों से 7 महाप्रभु को देख रहे थे दूर से। काशी मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा। तब राजा प्रताप रुद्र दौड़कर काशी मिश्र के पास गए और कहने लगे, महाप्रभु 7 महाप्रभु मुझे दिखाई दे रहा है। तब काशी मिश्र ने भी देखा कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे हैं। काशी मिश्र कहे तुम्हार भाग्य नहीं सीमा। तब काशी मिश्र ने कहा कि हे राजन, आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं है कि आज आपको महाप्रभु का दिव्य रूप का दर्शन हो रहा है। सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी, आर केह नाही जाने चैतन्य चुरी। और यह चीज कौन कौन देख रहा था? राजा प्रताप रुद्र, काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रताप रुद्र दोनों हंस रहे थे कि महाप्रभु 7 टोलियों में है और 7 टोलियों को लग रहा है कि हमारे ही टोली में है। यह दृश्य देखकर दोनों जन ठारा ठारी, दोनों मन ही मन में घुसफुस कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। और आर केह नाही जाने, और चैतन्य महाप्रभु की यह चूरी, यह लीला को, यह युक्ति को और कोई नहीं देख रहा था, और कोई नहीं जान रहा था। 3 ही जन उस रथ यात्रा में देख रहे थे, काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र। यारे तार कृपा से ही जानी बारे पारे, कृपा बिन ब्रह्मादिक जानी बारे नारे। ये रूप, इस प्रकार की लीला भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति दर्शन कर सकता है। अगर प्रभु की कृपा न हो तो इस प्रकार की लीला का दर्शन और कोई नहीं कर सकता है। यहाँ तक कृपा बिना ब्रह्मादिक, यहाँ तक ब्रह्मा भी इस प्रकार की लीला का दर्शन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भी इस प्रकार की लीला को नहीं समझ सकते अगर उस ब्रह्मा जी पर भगवान की कृपा न हो। भगवान की लीला समझने के लिए कृपा की बहुत आवश्यकता है। कृपा न हो तो वास्तविक भगवान की लीला नहीं समझ सकते, और श्रवण भी करने में हमें नींद आ सकती है। कृपा न हो, कृपा की कमी हो। ब्रह्मा का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि इस सृष्टि का सर्जन करने वाला ब्रह्मा भी एक दिन चक्कर में पड़ गया कि कृष्ण इस प्रकार ग्वाल बाल के साथ भोजन कर रहा है। वास्तव में यह भगवान नहीं हो सकता। द्वापर युग की लीला में भगवान कृष्ण जब अपने ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने, देखने के लिए कि यह भगवान हो सकता है। अपने मित्रों का जूठा खा रहा है, दूसरे को जूठा खिला रहा है, दूसरे के हाथों से खा रहा है। और कुछ कृष्ण के जो छोटे छोटे ग्वाल बाल मित्र थे, वो कृष्ण के पास कहते थे, कृष्ण हमारी मैया ने बहुत सुंदर यह आचार बनाकर बनाया है, तो तुम खाओ। तो कृष्ण के पास वो हाथ लाते थे, तो कृष्ण जैसे ही खाने जाते थे वो हाथ खींच कर ले लेते थे। तो इस प्रकार से कृष्ण के साथ हंसी मजाक इत्यादि कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि वास्तव में यह कृष्ण नहीं हो सकते, यह भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ऐसी स्थिति में कभी नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए। जितने भी बछड़े चर रहे थे, सारे बछड़े ब्रह्मा जी लेकर ब्रह्मलोक में छिपा दिया। वापस आए तो बछड़े चुरा लिए थे, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को, भगवान कृष्ण को पता चल गया कि ब्रह्मा जी ने यह कार्य किया है, तो अपने ही शरीर से कई सारे बछड़े प्रकट कर दिए। तो ब्रह्मा जी आए, बाद में ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। तो कृष्ण ने ग्वाल बालों को फिर से अपने ही शरीर से प्रकट करवा दिया। तो ब्रह्मा जी आकर देखते हैं, जो बछड़े को और जो ग्वाल को मैंने चुरा कर रखा है, वही ग्वाल बाल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को पता चला, बुद्धि आई कि वास्तव में यही कृष्ण है, यही भगवान है और इसी भगवान की लीला है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की, नौमियते प्रभु पुषेत विडम्बराय गुंजावसन परिपीछ से लसन मुखाय वन्या स्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्री मृदुपंग मृदु प्रते पशुपंग जाय। हे कृष्ण, ब्रह्मा जी अब कल्पना कीजिए कैसा दृश्य होगा। कृष्ण बहुत ही छोटी उम्र के है, बहुत ही छोटी उम्र है कृष्ण की, और ब्रह्मा जी बड़े पहाड़ जैसे ब्रह्मा जी का शरीर है और चार चतुर्भुज, चार मुख है और चार चार और चार मुख है, दो 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 आठ हाथ है। तो पहाड़ जैसा ब्रह्मा एक छोटे से बालक के सामने हाथ जोड़कर बैठा है और 20 श्लोकों में प्रार्थना कर रहा है, कृष्ण कृपया करके आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बैठा है, बहुत सुंदर प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की, लेकिन कृष्ण ने क्षमा नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा अपराध ब्रह्मा जी कर चुके थे। ब्रह्मा जी का अपराध यह था कि ब्रह्मा जी ने अपने प्राण से भी प्रिय बछड़े को और अपने सखा को ब्रह्मा जी चुरा लिए थे, कृष्ण से अलग कर दिए थे। हालांकि ऐसा अपराध तो एक बार इंद्र ने भी किया था, बारिश करके सांबर तक मेघ गिराकर और भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी भगवान इंद्र के ऊपर इतना क्रोधित, इतने गुस्से में नहीं थे क्योंकि इंद्र ने सभी भक्तों को कृष्ण से मिला दिया था। कृष्ण ने सोचा मैं कहां कहां सबके घर घर जाकर सबको मिलूंगा और दर्शन करूंगा, तो उससे तो अच्छा है कि सभी भक्त इंद्र की यह कृपा से यहाँ पर आ गए और मैं सबका दर्शन कर सकूं। लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर बहुत ही नाराज थे कृष्ण, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने भक्तों से अलग कर दिया था। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, यहां तक प्रार्थना की कि प्रभु आप परम पिता हो और हम सब आपके पुत्र हैं, तो आपने ही हमें जन्म दिया है, आप ही हमारे जननी हो, माता हो, पिता हो, आप सब कुछ हो। और देखा जाता है कि संसार में अगर कोई छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा अपनी माता के गोद में बैठा हो तो कभी कभी वह दूध पीने वाला बच्चा अपनी माता को ही लात से मार देता है, कभी कभी अपनी माता को ही मारता है। तो वह छोटे से दूध पीने वाले बच्चे की लात से यह देखकर क्या माता उसे छोड़ देती है, पटक देती है? तो ठीक उसी प्रकार प्रभु आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, और हमसे इस प्रकार का अपराध हो भी जाए तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी प्रार्थना की और ब्रह्मा जी, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। कहने का तात्पर्य यह है, कृपा बिना ब्रह्मा जी का जानी बारे नारे, कृपा के बिना ब्रह्मा भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हम पर कृपा कीजिए कि हम आपको समझ सके, श्रवण कर सके, आपका नाम ले सके। तो यहाँ पर तीन व्यक्ति पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है, काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र। तो यह तीनों जन चैतन्य महाप्रभु की लीला को देख रहे हैं। कृपा इसलिए हुई है क्योंकि प्रताप रुद्र राजा होने के बाद भी अपने हाथ में झाड़ू लेकर रास्ता सम्मार्जन किए थे, इसलिए कविराज गोस्वामी कहे थे कि इस पर कृपा होगी, तो इस प्रकार से कृपा हुई। तब राजा र तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन, तो राजा की यह तुच्छ सेवा देखकर प्रभु का मन संतुष्ट हुआ, इसलिए सहित प्रसादे पाइल रहस्य दर्शन। तो राजा की इस प्रकार की सेवा देखकर यह जो रहस्य था, चैतन्य महाप्रभु का सात रूप में विस्तार होना, यह रहस्य का दर्शन राजा प्रताप रुद्र कर सके। साक्षात ना देय देखा परोक्षेत दया के बुझीते पारे चैतन्य चंदेर माया। कैसी माया है प्रभु की कि जब राजा प्रताप रुद्र लेटर में लिखे थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, तब चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया मैं नहीं मिलूंगा, मैं किसी भी राजा से नहीं मिलता हूं। तो साक्षात ना देय, साक्षात तो नहीं मिले लेकिन परोक्षेत दया, लेकिन परोक्ष से चैतन्य महाप्रभु दया किए। तो इस प्रकार कविराज गोस्वामी कहते हैं के बुझीते पारे, चैतन्य महाप्रभु की लीला को कौन समझ सकता है? सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशयी राजा रे प्रसाद देखी हईला विस्मय। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र राजा के ऊपर जो कृपा हुई चैतन्य महाप्रभु की वह देख रहे थे। यही मत लीला प्रभु केल कतक्षण, 7 बज गए, आपने गायन नाचा त निज भक्तगण। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने लीला की और जितने भी टोलियां थी वह टोलियों में चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे। कभु एक मूर्ति कभु हन बहुमूर्ति कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशय शक्ति। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु एक रूप में तो कभी 7 रूप में, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग रूप हो रहा था। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु तो नाचने में मग्न थे। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, लीला वेशे प्रभुर नाही निजानुसंधान। चैतन्य महाप्रभु को यह मन में नहीं था कि मैं 7 रूप में प्रकट हो जाऊं या 1 रूप में या इसको दर्शन दू या न दू। चैतन्य महाप्रभु तो नाचने और गाने में मग्न थे, उसको जगन्नाथ के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान। लेकिन जो लीला शक्ति है चैतन्य महाप्रभु की, जो शक्ति है अंतरंगा, वो अंतरंगा शक्ति है लीला प्रकट कर रही थी। महाप्रभु तो मग्न थे उस भगवान जगन्नाथ के कीर्तन में। पूर्व एछे रासादी लीला केछे वृंदावने अलौकिक लीला गौर केल क्षणे क्षणे। तो पूरे जिस प्रकार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की थी, तो उस प्रकार अलौकिक लीला महाप्रभु यहाँ पर कर रहे हैं। भक्तगण अनुभवे नाही जाने आन श्री भागवत शास्त्र ताहते प्रमाण। वास्तव में यह लीला को, चैतन्य महाप्रभु की लीला को शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। और ना ही जाने आन शुद्ध, जो भजन नहीं करता है, जो भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु की इस लीला को नहीं समझ सकते हैं। प्राय आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन यह प्रवचन अगर मैं जनरल में करूं तो 50% लोग यहाँ पर सोते आपको दिख सकते हैं। क्योंकि यह लीला को जो भक्त है और वास्तव में जो शुद्ध भक्ति कर रहा है यही जान सकते हैं। और कहते हैं श्री भागवत शास्त्र ताहते प्रमाण, प्रमाण है भागवत, भागवत प्रमाण है, श्रीमद् भागवत महापुराण ये प्रमाण है कि जो भक्त है वही इस प्रकार की लीला को समझ सकता है। एई मत महाप्रभु करे नित्य रंगे भाषाइल सब लोक प्रेमर तरंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, उल्लास आनंद आनंद पूर्वक प्रेम उल्लास पूर्वक नृत्यन कर रहे थे। और भाषा इल सब लोक प्रेमर तरंगे, और नृत्य करते करते, गाते गाते, नृत्य करते करते सभी लोगों के हृदय में प्रेम का तरंग, प्रेम के तरंग भर रहे थे। अर्थात सभी लोगों के हृदय में प्रेम भर रहे थे महाप्रभु। एई मत हेल कृष्णर रथे आरोहण तार आगे प्रभु नाचाइल भक्तगण। तो इस प्रकार एक रूप से महाप्रभु जो जगन्नाथ जी के रूप में रथ पे आरोहण थे, और एक रूप से वही कृष्ण यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में नृत्य कर रहे थे। आगे शून्य जगन्नाथ हेरे गुंडीचा गमन तार आगे प्रभु ये छे करीला नर्तन। आगे सुनो जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी किस प्रकार गुंडीचा गमन कर रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं। और तार आगे रथ के आगे प्रभु ये छे करीला कीर्तन, और महाप्रभु वहां पर कीर्तन कर रहे हैं। एई मत कीर्तन प्रभु करील कतक्षण आपन उद्योगे नाचाइल भक्तगण। तो इस प्रकार महाप्रभु ने कुछ क्षण तक कीर्तन किया, नृत्य किया, और आपन उद्योगे नाचाइल भक्तगण, और खुद को स्वयं तो कीर्तन किए, स्वयं तो वहां पर नाचे, और जितने भी भक्त थे वह सब भक्तों को अपने साथ नचाए। आपनी नाचिते यबे प्रभुर मन हैल 7 संप्रदाय तबे एकत्र करेल। अब हो रहा है 7 टोलियों में कीर्तन हो रहा है, नाच रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु के मन में हुआ कि अब महाकीर्तन होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को और भी प्रेम आवेश में आए और अब मन में आया कि अब यह ठीक नहीं है टोलियों में कीर्तन करना, कहने लगे अब और भी महाकीर्तन करना है। तब चैतन्य महाप्रभु ने मन में सोचा कि सात संप्रदाय तब एकत्र करें। तब अनाउंसमेंट किया गया कि सातों टोली यहाँ पर उपस्थित हो जाओ, एकत्रित हो जाओ। तब सातों टोली बहुत ही जल्द चैतन्य महाप्रभु के पास आ गई। तब शिवास रामाय रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव गोविंद ये सब उदंड नृत्येर प्रभु यबे हेल मन स्वरूपेर संगे दिल एई नवजन। तो ये सब यहाँ पर आए और उदंड नृत्य बहुत ही प्रचंड रूप में बहुत ही तीव्रता के साथ नृत्य करने लगे और स्वरूप दामोदर को यह नौ जन का क्या कहते हैं सौंप दिया। नौ जन को स्वरूप दामोदर के अंतर्गत शिवास रामाय रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव गोविंद ये सबको स्वरूप दामोदर के अंतर्गत सौंप दिया। ए दश जन प्रभुर संगे गाय धाय आर सब संप्रदाय चारी दिके गाय। तो इस प्रकार सब लोग महाप्रभु के साथ गाते थे, दौड़ते थे, कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे। दंडवट करी प्रभु युडी दुई हाथ, दोनों हाथ जोड़कर उस वक्त प्रचंड कीर्तन किया हरि बोल करके हरे कृष्ण महामंत्र लेते हुए। और कीर्तन करते करते महाप्रभु दोनों हाथ जोड़कर अचानक कीर्तन करते, मान लो जोर जोर से कीर्तन शुरू है प्रचंड मात्रा में, कई सारे 14 मृदंग अब एक साथ बज रहे हैं और करताल इतने ही करताल होंगे और इतने ही लोग होंगे, इतने ही नाचने वाले हैं, सब कुछ हो रहा है। महाप्रभु भी कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
लेकिन उस वक्त कीर्तन करते करते अचानक महाप्रभु दोनों हाथ जोड़कर दंडवट करने लगे और दंडवट करके खड़े हुए तब दोनों हाथ जोड़कर अपना सिर भगवान जगन्नाथ के सामने ऊर्ध्व मुखे स्तुति कर देखी जगन्नाथ, और अपना सिर ऊपर किए और ऊपर करके जगन्नाथ जी की ओर देख रहे थे और जगन्नाथ जी की ओर देखकर स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की? तो कहते नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। के प्रभु नमो ब्राह्मण देवाय, आप ब्राह्मणों के देव हो, ब्राह्मणों का पालन करने वाले हो, और गौ ब्राह्मण हिताय च और गैया के, अब गौ का अर्थ है ग्वाल बाल, गोप बाल, गाय है, गोपी है, तो यह सब लोगों के आप हित करने वाले हो, और फिर से ब्राह्मण के आप हित करने वाले हो, और जगत दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो, और आप इस जगत के हितेशु हो, आप सिर्फ आप भक्तों के नहीं इस सारे संसार के सारे जगत के हितेशु हो, तो ऐसे गोविंद ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में सत्य बात है, भगवान जो है इस जगत में सबके हितेशु है, ऐसा नहीं है भजन करने वाले के ऊपर तो हितेशु है ही, भजन करने वाले का ध्यान भगवान रखते ही हैं, लेकिन भजन नहीं करते हैं और भगवान को गाली भी देते हैं फिर भी उसके ऊपर भगवान अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियोस्ति, कृष्ण गीता में कहते हैं मैं सबके प्रति सम हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एक के प्रति ज्यादा प्रेम करता हूँ एक के प्रति कम प्रेम करता हूँ। इस संसार में जितने भी जीव है जितने भी लोग हैं भगवान के पुत्र हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, तो अंश होने के नाते हम भगवान के पुत्र हैं। तो इस संसार का एक भौतिक बाप भी भौतिक पिता भी अपने चार पुत्र हो तो चारों पुत्र के प्रति समान प्रेम रखता है, फिर चारों पुत्र में कोई अंधा हो बेरा हो लंगड़ा लूला कुछ भी हो लेकिन फिर भी चारों पुत्र के प्रति समान प्रेम होता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में सभी जीव भगवान के पुत्र हैं और सभी के प्रति भगवान का समान प्रेम है। लेकिन हम देखते हैं कि वह चारों पुत्रों में से अगर कोई पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है, पिता की आज्ञा को अगर कोई मानता है तो पिता उसका प्रत्युत्तर करते हैं, पिता का प्रेम उसके प्रति थोड़ा और बढ़कर होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान का हम सब पर अनुग्रह है, लेकिन अगर हम भगवान के सेवा परायण बनेंगे, भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान हमारा और भी अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। तो भगवान कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, वैसे तो मैं सबके प्रति सम हूं, न मे द्वेषो अस्ति न प्रियो, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, लेकिन ए भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन अगर कोई मेरा भजन करता है तो मई ते तेषु चाप्य, मैं अर्जुन ऐसे भक्त के हृदय में मैं रहता हूं और ऐसे भक्त को मैं मेरे हृदय में रखता हूं। तो अगर हम भगवान के हृदय में रहना चाहते हैं तो भजन करना चाहिए। तो जगत हिताय कृष्णाय, भगवान सब पूरे जगत के हितेशु है, तो ऐसे गोविंद को, ऐसे कृष्ण को, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक का उच्चारण किया और दूसरे श्लोक का उच्चारण किया, जो मुकुंद माला स्त्रोत का श्लोक है, जयति जयति देवो देवकी नंदन असो, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीय, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाश मुकुंद। हे देवकी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आपकी जय हो। हे वृष्णि वंश के कुल दीपक, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आपकी जय हो। जिसकी अंग क्रांति मेघ के समान श्याम रंग की है और जिसका कोमल अंग पुष्प के समान कोमल है, और इस प्रकार जो स्वयं भगवान है, इसकी जय हो। और पृथ्वी के ऊपर असुरों के भार दूर करने वाले के लिए ही अवतरण यहाँ पर प्रकट हुए हैं, और प्राणी मात्र के सभी जीवों के को मुक्ति देने वाले ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु यह दूसरे श्लोक का उच्चारण किए और तब तीसरे श्लोक का उच्चारण किए, वो श्रीमद् भागवतम से है। जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो, यदुवर परिषत स्वे दौर्भी रस्य नन्न धर्मम, स्थिर चर वृजिग्न सुस्मित श्री मुखेन व्रजपुरी वनिता नाम वर्धयन काम देवम। जो जन निवास के रूप में या जीव मात्र के परम आश्रय के रूप में प्रसिद्ध है, और जो देवकी तथा यशोदा के पुत्र के रूप में, यशोदा नंदन और देवकी नंदन के रूप में जगत विख्यात है, ऐसे कृष्ण यदुवंशों के पथ दर्शक है, और जिसके प्रबल भुजाओं से अशुभ पापियों को वो संहार करते हैं, और जो गोपियों के काम भावना में अभिवृत्ति करते हैं, ऐसे कृष्ण की सदा जय जयकार हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने तीसरा श्लोक का उच्चारण किया और चौथा श्लोक का उच्चारण किया कि वास्तव में मैं कौन हूं। अपनी पहचान चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक में दी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाहम विप्रो नच नरपति, मैं कोई विप्र, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, और नच नरपति, मैं राजा नहीं हूं या क्षत्रिय नहीं हूं, और न अपि वैश्यो न शूद्रो, मैं न वैश्य हूं न शूद्र हूं। तो क्या हो भाई आप? तो कहते नाहम वर्णी नच गृहपति, मैं वर्णी, मैं किसी भी प्रकार के वर्ण के अंतर्गत नहीं हूं, और नच गृहपति, मैं किसी के पत्नी का पति भी नहीं हूं, और किसी के घर का मालिक भी नहीं हूं, और न वनस्थो नहीं अतिव्रा, मैं कोई सन्यासी भी नहीं हूं, मैं यति भी नहीं हूं, किंतु प्रदो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे, लेकिन मैं गोपी भरतार पद कमलम यो दास दासानुदास, गोपी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका जो गोपियां हैं, उस गोपियों के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्तों के दास का दास का दास का दास का दास में हूं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार स्वयं भगवान है, लेकिन देखिए किस प्रकार अपनी पहचान दे रहे हैं। हमें कोई पूछे आप कौन हो, हम तो भक्त हैं, हम तो इस्कॉन के डिवोटी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। वास्तव में जो भक्त होते हैं वो कभी कहते नहीं हम भक्त हैं, कभी नहीं कहते हम भक्त हैं, हम तो पापी है, हम तो बहुत ही कामी है, क्रोधी है, हम भक्त नहीं है। और जो कहते हम भक्त हैं वह अभी भी बहुत ही नीचे की कक्षा में है। भक्त भले है, भले भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन बहुत नीचे की कक्षा में। हमें कोई पूछे आप कौन हो, तो हम तो रहते हैं तुलसी टावर में 701 के मालिक हैं, हम इसके पति हैं, हम ये है वो है। महाप्रभु कहते मैं कोई नहीं हूँ, मैं किसी भी वर्ण कोई भी आश्रम में नहीं हूँ, मैं गोपियों के पद चिन्ह पर चलने वाले दास 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 दासों का भी दास, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। महाप्रभु स्वयं भगवान है और स्वयं भगवान को यह कहने की क्या जरूरत है, हमें सिखा रहे हैं कि हमारी पहचान क्या, हमें क्या करना है, हमें गोपियों के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्तों के दास के दास के दास के दास के दास बनना चाहिए। तो डायरेक्ट भगवान के पास तो हम नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए गोपियों के चरण में जाना होगा जो भगवान के पास है। लेकिन डायरेक्ट गोपियों के पास भी हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए गोपियों की जो सेवा करने वाली है उसे कहते हैं मंजरी। तो मंजरी के पास भी हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो उस मंजरी को भी हेल्प करने वाली जो सेवा करने वाली है किंकरी, उस किंकरी के पास पहुंचना भी हम में कोई योग्यता नहीं है। तो किंकरी की भी जो सेवा करती है, किंकरी की भी जो भक्ति करती है, वैसे कुछ भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों की अगर हम सेवा करेंगे तब जाकर हमें कृष्ण की कृपा मिलेगी और कृष्ण मिलेंगे। और एक सिद्धांत मैं आपको समझा दूं, कभी भी कृष्ण को डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, कभी नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट ढूंढोगे नहीं मिलेंगे, कृष्ण को ढूंढना है तो गोपियों के पद चिन्हों पर और गोपियों के भक्त के दास के दास के दास के दास के से ही हमें मिल सकते हैं। और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को मिलने के लिए जितने दास बढ़ाएंगे हमारे और कृष्ण के बीच में, उतना जल्दी कृष्ण के पास पहुंचेंगे। जितने ब्रोकर बढ़ाएंगे, यही है दास को बढ़ाना, अर्थात छोटे से छोटे भक्त की सेवा करना, इसका अर्थ यह है कृष्ण और हमारे बीच में ज्यादा दास ज्यादा ब्रोकर है। तो जितने ब्रोकर बढ़ाएंगे उतना जल्दी हमें कृपा मिलेगी, उतने जल्दी पहुंचेंगे। तो अक्सर हम भक्त की सेवा करना नहीं चाहते हैं, अरे भक्त है तो नया आया है, अरे ये तो चार माला ही कर रहा है, लेकिन वो चार माले से ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो यह चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर सिखा रहे हैं कि इस प्रकार गोपीर भर्तार पद कमलम यो दास दासन दास, दास बनकर भक्तों की सेवा करनी चाहिए और भक्तों की सेवा से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार महाप्रभु ने नृत्य कीर्तन किया, टोली बनाई और इस प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया। तो आज समय बहुत कम होने के कारण हम यह प्रसंग आधा ही छोड़ रहे हैं, आधा प्रसंग हम अगली रथ यात्रा में लेंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब किस भक्त को कैसे कीर्तन करना है यह तो आप जान ही गए होंगे, महाप्रभु ने जो हमें सिखाया है उस भाव में इस प्रकार हमें नृत्य और कीर्तन करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमें कैसे करना है तो हम अभी मीटिंग करेंगे, किस कौन से व्यक्ति को क्या क्या सेवा देनी है तो अब शुरू होगा। उसके पहले किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। यमुना